हम तो वक्त जाया किए हुए लोग हैं। आप कहते हैं कि हमारे असलाफ कैसे थे? असलाफ समझते हैं इंसेस्टर्स, फोर फादर्स, जैसे सहाबा, ताबईन, तबतक, यानी खैरुल करूम, जो बेस्ट टाइम था ना लोगों का। बच्चे के पैदा होने से पहले माएं मन्नतें मान लिया करती थी। इसकी एक मिसाल तो कुरान में भी, अभी आप वहां नहीं पहुंचे, पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आप चल पड़े, अब देखिएगा आप कहाँ भागते हैं, अल्लाह ताला आपसे बहुत कुछ लेगा। हजरत मरियम की माँ, इन्नी नजर तुलकमा फी बतनी मुहर्रा फतकब्बल मिन्नी। ए अल्लाह, मेरे पेट में जो बच्चा है उसको तेरी नजर करती हूँ, जो भी होगा उसको तेरे दीन पे लगा दूंगी। इसको नजर तबर्रो कहते हैं, नेकी की नियत। इमाम बुखारी की माँ के बारे में आता है, माँ के पेट में थे भी और माँ ने नियत कर ली कि अल्लाह, जो बच्चा मेरा पैदा होगा ना, इसको मैं हदीस नबी लिखने के लिए खास करूंगी। पहले दौर की बाशऊर माएं और बाप भी अपने बच्चों के पैदा होने से पहले जो दुआएं मांगते थे वो क्या मांगते थे? रब्बी हबली मिनस सालेहीन। वो ये नहीं कहते थे अल्लाह बेटा दे दे लाखों की जायदाद का वारस बन जाए, अल्लाह बेटा दे दे बुढ़ापे में मुझे पानी पिलाएगा, अल्लाह जरा बेटी दे दे जरा मैं भी उसके चाव पूरे करूं और फिर वो मेरी दुख सुख की साथी हो। वो औलाद भी मांगते तो क्यों मांगते थे? रब्बी हबली जुर्रियतन तैयिबतन, पाकीज़ा औलाद है। वो कहते थे, हजरत सुलेमान की एक मिसाल बुखारी की रिवायत में आती है, एक कहने लगे आज रात 100 बीवियों के पास जाऊंगा और अल्लाह मुझे उन 100 से 100 बेटे देगा और 100 मुजाहिद होंगे जो अल्लाह के दीन को सर्व करेंगे। नीयत कितनी अच्छी है। पहले दौर में ये था, जब कौमें जिंदा होती है ना, जिंदा जिसको हम कहते हैं, हम जिंदा कौम है, हम एक हैं, एक तराना भी है कौमी तराना सुना करते थे बचपन में। जब कौमें जिंदा होती हैं, इस कैफियत में होती हैं कि जब उनको अपने दुनिया में आने का मकसद भी पता होता है और बीइंग अ नेशन उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती हैं, तो वो क्या कहती हैं कि अल्लाह हमें ज्यादा बच्चे दे, हम ज्यादा मुसलमान पैदा करें और हम ज्यादा बच्चों की तरबियत करें और तेरे दीन को सर्व करने वाले ज्यादा हों। और इस्लाम में औलाद का नजरिया यही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी औरतों से शादी करो जिनके खानदानों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि क्यामत के दिन मैं अपनी कौम की कसरत का पे फख्र करूंगा। हमने 2 बच्चों का नारा पता नहीं कहां से सीख लिया, और 2 बच्चे क्यों? इसलिए कि हमें 2 ही काफी हैं। जब आप अपने लास्ट नेम, सर नेम, जो भी आपका है अपना सोचे, उसको आप बड़ा खास समझेंगे ना, बस मेरे साथ एक अली आ जाए और एक आयशा आ जाए, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, ना बेटे का कोई भाई रहे ना बहन बेटी की कोई बहन रहे, 2 बच्चे, खुशहाल घराना कभी भी नहीं रहेगा। वो लोग जो अपने मुल्कों में इतनी पैसे दे दे के कहते हैं बच्चे पैदा करो, ग्रांट्स देते हैं, वो हमारे मुल्कों में आकर कम बच्चों के नारे लगवाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमान जब बाकी चीजों में कम है तो इसमें भी कम ही रहे। हालांकि आपका मेरा काम क्या है, मुसलमान होने के नाते हम ख्वाहिश करें कि अल्लाह हम उम्मत मुस्लिमा में इजाफे का जरिया बने। तो ये सिंपल सा इजाफा है कि बच्चे ज्यादा हों, लेकिन बच्चे ज्यादा हो जाने के बाद करना क्या है? उनकी तरबियत। पैदा हो जाता था बच्चा तो उसके बाद उसकी तरबियत शुरू कर देती थी। एक औरत एक इमाम के पास अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर आई, कहने लगी कि इमाम साहब मुझे नसीहत कीजिए कि मैं अपने इस बच्चे की तरबियत कैसे करूं कि ये बहुत अच्छा बच्चा साबित हो। तो वो बच्चे को देखकर क्या कहते हैं? ए माँ, तूने आने में देर कर दी। इमाम साहब अभी तो पैदा हुआ, आने में देर कैसे कर दी? तो कहने लगे, अगर तू दी बेस्ट किस्म यानी एक्सीलेंसी के दर्जे पे चाहती थी तो उस वक्त आती जब ये तेरे पेट में था। और मुझे अभी रिसेंटली ये बात पता चली कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 6 मंथ, आपके कईयों के घरों में 6-6 माह के बच्चे होंगे जिनको अभी दूध भी नहीं सिखाया हमने, 6 माह का बच्चा उसके माइंड की 95% ग्रोथ हो चुकी होती है। जो सीखना, जो समझना, जो पट्टी डालनी वो डाल दे। और ये मुझे किसने बताया? एक ब्रदर है, सिस्टर यानी न्यूली मैरिड कपल है, तो उनकी बच्चे की उम्मीद है, तो वो उनके मियाँ की ख्वाहिश क्या है कि पैदा मेरा बच्चा जो वो किसी मुस्लिम मुल्क में हो और कम से कम शुरू के 6 महीने हम किसी मुस्लिम एटमोसफेयर में रहे, मक्का चले जाए, मदीना हो, अजाने सुने। वो क्यों? जिससे मुझे बात पता चली, वो खुद भी डॉक्टर है और उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस ये बताती है कि पैदा होते बच्चे के शुरू के 6 महीने जितना माँ बाप उसको इस्लामिक माहौल देते हैं, अल्लाह का कुर्ब देते हैं, अगले वक्त सारे आसान हो जाते हैं। हम क्या पूछते हैं बच्चों के मसले जब पानी सर से गुजर जाता है, हमारे कद से भी एक बालिश का दूसरा ऊंचा हो जाता है बेटे बेटियों का, फिर कहते हैं इनको समझाओ, राइट। तो बचपन से सफर शुरू किया, इमाम बुखारी की माँ छोटे से बच्चे को लेके चल पड़ी, जो टीचर उनको मिलता था उस दौर में, ये तरीका नहीं था तालीम का जो आज है, ये भी बिल्कुल आर्टिफिशियल है। जिसने सुबह भी आज इस पे बात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह दर्स में, कि ये जो बच्चों को हमने एक सिस्टम में डाल दिया ना, 18 साल 16 साल पढ़ते जाओ, फिर मैट्रिक, फिर FA, फिर BA, फिर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। 18 साल में तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह कर लिया था, इमाम बुखारी ने तो 18 साल की उम्र में पूरी सही बुखारी लिख ली थी, और सही बुखारी की जो शरह और फथुल बारी उनकी किताब थी वो लिख ली थी। हैरत होती है कि ये सब कैसे हो जाता था, क्योंकि माओ ने वक्त से पहले तैयारियां शुरू की हुई थी। हमारा आज हाल क्या है? अभी हम बच्चों पे तो जाते ही नहीं है, छोड़ दीजिए। मुझे किसी ने कान में कहा कि आप दर्स में आज इस मौजूद, आज बहुत यंग बच्चियां आएंगी दर्स में, ये कहीं ना कहीं लोग मेरे कान में डालते रहते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ देखे मैं वही बोलती हूँ जो मुझसे अल्लाह बुलाता है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगी, जैसे लोग होंगे अल्लाह वैसी बात कराएगा। कहने लगी कान में आज बहुत यंग बच्चियां आ रही हैं, तो आप जरा आज किस मौजू पे बात कीजिएगा कि आज हमारी नस्लें इस्लाम से दूर क्यों है। तो मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको एक जुमले में दे देती हूँ, दर्ज की क्या जरूरत है, माँ बाप इस्लाम से दूर है, सीधी सी बात है। तो आपने ये जुमला सुनना है तो मैं सबके बीच में कह देती हूँ, कभी नहीं ये ना बोलिएगा, सीधी सी बात है। किसी ने कहा कि अगर तुम ये कहते हो ना कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, अक्सर माँ बाप का ये गुमान है ना हमारी बात नहीं सुनते, तो डोंट वरी, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं भी सुनते तो वो तुम्हें देखते जरूर है। अंडरस्टैंड करें, हमारे बच्चे हमें ही देखते हैं। इसी तरह मेरी कजन है एक, तो बड़ी वो चुलबुली सी थी शादी से पहले, तो फिर शादी हो गई तो बच्ची हुई, पहले बच्ची, तो मुझे कहेंगी मेरी बच्ची के लिए दुआ करे ना, तो मैंने कहा मैं क्या दुआ करूं कि इसको अल्लाह बिल्कुल तुम जैसा बना दे, कहती दाना मेरे जैसे ये बिल्कुल ना बने। तो भाई आप कैसे छुपा सकते हैं अपने बच्चों से, आप जो करेंगे बच्चे भी वही करेंगे। तो जब माँ के हाथ में कुरान आता है ना, तो बच्चों के हाथ में भी आता है। आप में से इस महफिल में जो सिस्टर उम्र के एतबार से सबसे छोटी है, वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है। वजह, उनके पास इंशाल्लाह एक लाइफ स्पैम अभी बाकी मौजूद है। जिंदगी का तो किसी को नहीं पता ना, 16 वाले ने ज्यादा जीना है या 50-70 वाले ने जीना। अभी रिसेंटली किसी ट्रिप में पता चला 19 इयर्स की बच्ची की डेथ हो गई, माँ की, कि अकलौती बेटी थी, और बस अचानक बीमारी डायग्नोस हुई, 6 महीने में घुल घल के बच्ची चली गई, किसी को नहीं पता। लेकिन जो 16-17 में शुरू कर गया वो भी देर है, लेकिन चलिए वो उससे बेहतर है जो 40-50 में शुरू कर रहे हैं। अब आप अपने ऊपर एक एवरेज एज लेके रखिए, हम ज्यादा इधर नहीं करते उधर नहीं करते, जो हम में से 30 साल से ऊपर पहुंच चुका है, सच बताए माने ना माने, लेकिन हम अपनी आधी जिंदगी तो गुजार चुके हैं ना, सच के नहीं। मैंने फिर कह दिया कि मौत का कोई पता नहीं, लेकिन 60-70 को एवरेज करे तो 30 में आधा तो हो ही जाता है, तो आधी जिंदगी तो गई। और किसी को दूसरी बात है ये भी नहीं पता कि 60 भी बुरे होने हैं कि नहीं, ठीक है। जब आधी जिंदगी चली गई, आज हमने शुरू किया सूरत फातिहा को पढ़ना, हफ्ते में एक दिन पढ़ेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा, 10 साल ऊपर लगाइए। आप नॉन स्टॉप पढ़ सकते नहीं है, हमें खुद पता है, हम हर वक्त कोर्सेज के स्केड्यूल और प्लानर्स और लेसन प्लान्स बनाते रहते हैं, एक कोर्स में कमो बेश भी हमें 60 से 70 छुट्टियां देनी पड़ती हैं, यानी 2-2.5 महीने की टोटल काउंट डेज करें ना, जब एक हमारा ये सीरो जन्ना का लेसन प्लान बनता है, ये ऑलमोस्ट 280 लेसन होते हैं। तो जब हम इसको कैलेंडर पे फिट करते हैं ना कि आपके इस कोर्स को किधर कैसे करना है, कम से कम 60 से 70 क्लासें छुट्टी देनी पड़ती है। रमजान में छुट्टी होती है, फिर ईदें आती हैं, बीच में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं इश्यूज, छुट्टी देते हैं। आप 10 साल की उम्र लगा लीजिए, कुरान पढ़ लिया आपने, ये आपका पहला कुरान होगा। अब आप मुझे बताएं कि आज जो सफर शुरू हुआ, 10 साल बाद सिर्फ आप फातिहा से नास पे पहुंची, तो क्या आप उसके बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आगे दूसरों को बताएं? 10 साल में पहला भूल ना चुका होगा, और फिर उसके बाद हम नूरुल्ला नूर कोर्स ऑफर करते हैं। हर स्टूडेंट पे ऐसे ही चलता है कि भाई आपने एक दफा पढ़ लिया, इसके बाद अब आपको दोहराई कराएंगे। नूरुल्ला नूर कोर्स है ना, वो 120 डेज का कमोबेश कम से कम वो रहेगा, जिसमें आपको हर क्लास में 1/4 पारा कराएंगे। और उसमें और बहुत कुछ भी ऐड अप होता है, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ रफ फिगर्स की बात करते हैं। तो 10 साल में खैर से आप ये करेंगे, तो 5 साल में आप नूरुल्ला नूर कोर्स का सिर्फ एक सेशन करेंगे। तो आपकी
साल
उम्र
से पहले
मुबारक।
ही 4 साल से
मैं
इतना
अभी आपको बताती हूँ, मैं तो आपको डरा रही हूँ, आप डर
नहीं,
जाएं
इससे
कि आप
पहले भी कर सकते हैं ना, 10 साल से थोड़ा अच्छा भी लगा सकते
जी, वो उसके लिए ज्यादा दिन देने पड़ेंगे ना,
हैं। एक
ज्यादा
हफ्ते
टाइम
में
लगे
एक दफा, अच्छा 2 दफा पढ़ सकते हैं, 3 दफा पढ़
जी।
सकते
देख
हैं।
कितनी अकलमंद सिस्टर है हमारी, इन्होंने तो मेरा काम ही आसान कर दिया है। अब आप बताइए कि जब आप आज से लेके 15 से 20 साल का प्लान लेकर बैठे हैं, तो फिर आप 50 साल की उम्र में जब खैर से इस काबिल होंगे कि पढ़ा हुआ जरा आगे लेके चले, तो उसके बाद आप दूसरों को सर्व करेंगे। इतना टाइम नहीं है, हम वक्त गुजार चुके। हाँ, अगर हमारी माओ ने 7-8 साल की उम्र में हमें किसी मदरसे में डाला होता और 10 साल का आलिमा का कोर्स साइन अप किया होता, आइडियल एज थी। हम 20 साल की उम्र में हाफ़िज़े कुरान भी बन चुके होते, तजवीद भी अच्छी हो जाती, ग्रामर भी अच्छी होती, तफसीर का फहम होता, और 20 साल से आज तक हम भी कुछ इंसानियत को नफ़ा दे रहे होते, अमल भी होता। लेकिन ये तो ड्रीम है ना, इसको छोड़ दीजिए, अब करना क्या है? सारी बातों को छोड़कर वापस आप कैलिफोर्निया आ जाए, आप अपने सरकमस्टांसिस पे देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात है कि आप सब सेहतमंद सिस्टर्स हैं, अल्लाह आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती दे। और मैं आपको बताऊंगी ये दुआ मैं आपको दू ना दू, जिस वक्त आप कुरान को एज अ स्टूडेंट पकड़ेंगे ना, सबसे पहले जिस चीज में आपके बरकत होगी ना, वो आपकी सेहत अच्छी होगी। ये बात मैं आपको, कोई जज्बाती नारे नहीं है, ये कोई सियासी बयान नहीं इस वक्त हो रहा कि मैं आपको जमीन आसमान के खिलाबे मिला दूं और सबज बाग दिखाऊं। ये मैं दुनिया की किसी भी अदालत में आप खड़ा कर लेना, तो ये बातें मैं आपको कहने को तैयार हूं, और ये सारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे। जितना वक्त कुरान को देंगे उतना आपके वक्त में बरकत है। जितनी जल्दी शुरू कर देंगे ना, मतलब आप यंग एज में अपनी तालीम शुरू कर दें कुरान की खिदमत, आप बूढ़े ही नहीं होंगे। लोग कहते अच्छा आप तो जवान हैं, तो मैंने कहा आपने क्या सोचा हुआ था कि मैं कुछ छड़ी पकड़ के आऊंगी आपके पास? ये जब दूसरे शहरों में जाते हैं ना, तो लोग ये सोचते हैं कि हम, मुझे खुद कहते हैं लोग, हालांकि पता नहीं आपका क्या गुमान है मेरे बारे में कि आपने मेरे लिए क्या सोचा था। मैं अक्सर उनसे कहती हूँ, क्या मैं अपनी आवाज से बहुत बूढ़ी लगती हूँ? कहती नहीं, बूढ़ी नहीं लगती है, आप जो बताती हैं बातें बड़ी गहरी होती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कोई काफी बड़ी उम्र की खातून होगी। तो उम्र कोई उम्र की थोड़ी बहुत की बात नहीं है, हम ये क्यों सोचते हैं कि दीन का काम बुढ़ापे में जाके होना है? मेरा अपना जाती ख्याल है, जिस उम्र में आप कुरान का सफर शुरू करते हैं ना, आपकी जिंदगी की घड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। दूसरे लोग वक्त के साथ साथ बूढ़े दिखेंगे, कुरान से ताल्लुक वाले वक्त के साथ साथ आपको हेल्दी और फ्रेश और वो न्यूट्रिएंट्स दिखते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी मिलती है। बाकी कामों में आप थकते हैं, इसमें आपको सुकून मिलता है। जैसे अभी मैं यहां आई हूं तो मैं काफी थकी भी थी, रियली सफर सफर ही होता है, कल के जगराता भी है, नींदे भी हैं, आपके सामने ही है, जो लोग जानते हैं। तो इतनी लंबी फ्लाइट, रात की फ्लाइट थी, ह्यूस्टन से हम निकले, फिर आए गए, कल का पूरा दिन था, फिर कल शहर में, एक शहर में रहे, फिर 2-2.5 घंटे इधर आए, फिर शाम को आते ही आपके साथ एक दर्स हुआ वहां, फिर उसके बाद जो भी हुआ, मैं कोई एहसान नहीं जतला रही, लेकिन इस पार्ट ऑफ लाइफ, और ये रूटीन है, सुबह से आप देख लीजिए अब दूसरी दफा। लेकिन अब आप चाहें तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे भी कहें कि चलें आज छोड़ें इन बातों का, आए हम अपना सबक पूरा करते हैं और आप खुद ही पढ़ा दें, वल्ला ही मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इस पढ़ने पढ़ाने से एनर्जी मिलेगी, इसमें ताकत मिलती है। जिन चीजों का मुजर समझते हैं ना आने का और ना पढ़ने का, यकीन कीजिए कि वो चीजें हमें एनर्जी देती हैं। शैतान को ये बहुत अच्छी तरह पता है। माएं क्या कहती हैं, हाय छोटे बच्चे, चलिए हम देखते हैं मोमन क्या रीजंस होती हैं हमारे पास जब आपको दावत मिलती है कि कुरान का एक कोर्स ऑफर हो रहा है, आ जाइए। जैसे आप तो सभी आते हैं, मुझे उम्मीद है तभी तो आ जाए आप, कुरान के लिए आए ना, मेरे लिए थोड़ी आए आप। अब आप तो आ रहे हो, इस शहर में कितनी और सिस्टर्स हैं, ये पूरा कमरा छोड़िए पूरा घर भर सकता है। अमूमन जब हम लोगों को ये कहते हैं कि कुरान की क्लास शुरू हो रही है तो आप आइए, क्यों नहीं आ पाते लोग, वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि छोटी बच्चियों को कहेंगे तो स्कूल और कॉलेज, ये पढ़ती हैं इसलिए नहीं आ सकती, वीकडेज में 5 दिन उधर जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, किसी की बच्ची या बच्चा या आप खुद जिसकी भी जो एज है, आप 16-17 साल की उम्र के हो गए और अगर अभी तक आपने कुरान को समझा नहीं, पढ़ना फिर उसको तर्जमे से समझना और उसके तकाजों पे अमल नहीं है, تو آپ کامیاب نہیں ہیں. میرا لے 16 ایئرس کی ایج میں میٹرک ہو ہی چکا ہوتا ہے نا, میٹرک کا ہم حساب لگا لیتے ہیں, او لیول کو کہہ لیجئے یا یہاں کا سیٹ اپ کر لیجئے. عموماً 16 سال کی عمر تک بیسک جو ایک اسکول کی تعلیم ہے وہ پوری ہو کے بچے ہائی اسکول میں جانے لگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, غلط بھی ہو سکتا ہے میرا اندازہ, لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. 18 کہہ لیجئے, 18 کو کر لیتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک بچہ 18 سال تک پڑھتے پڑھاتے یا 2 سال شروع کے نکال دیں, 15-16 سال کے بعد وہ اے لیول کرتا ہے یا او لیول, اور آپ اس کو الگ بٹھا کر سورۃ فاتحہ سے لے کے ناس تک ذرا مختلف صفوں سے کہتے بیٹا قرآن سناؤ, وہ نہیں پڑھ سکتا. آپ اس سے ترجمہ پوچھ لیں کسی آیت کا, نہیں کر سکتا. یقین کرے وہ فر فر انگلش بولے, وہ فرینچ بولے, وہ اسپینش بولے, وہ نارویجین بولے, وہ اردو بولے, پنجابی بولے, وہ کامیاب نہیں ہے. جس کی میں نے بات بتائی 19 ایئرس کی ایج میں بچی فوت ہوئی, تو میں نے باتوں ہی باتوں میں پھر ان سے ایسے ہی پوچھا, وہ خود ہی بات کر رہی تھی, بہت زیادہ ڈپریس تھی, تو باتوں میں پوچھا کہ سناؤ بچی کو کیا کیا آتا تھا, نماز, قرآن, اسلام. تو جو میرا ایسٹیمیشن تھا وہ یہی تھا کہ جو جیسی بچیاں پلی ویسی پل گئی. جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ چل رہا ہے, بچوں کو سادہ قرآن پڑھا دیتے ہیں اور اسکائپ پہ آج کل پڑھاتے ہیں تو اور بھی آسانی ہوگی, مسجدوں میں جانا نہیں پڑتا. کیا ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ میں اور آپ اس شہر جدھر آپ ہیں, آپ اس وقت کچھ ساتھی آن لائن سے بھی سن رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور عموماً ہر کلاس ہی جو بھی سیشن ہو رہے ہیں وہ آن لائن پہ بھی آتے ہیں, صبح شام آ رہے ہیں. کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے کیلیفورنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں, سیکرامنٹو میں بیٹھے ہیں نا سب آپ سسٹرز, اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس اسٹیٹ میں کب سے ہیں؟ سوچیے, خود سے جواب دیں, مجھے نہیں کہنا آپ نے کچھ. آپ میں سے کوئی 2 سال پہلے آیا ہوگا, اور کوئی ہو سکتا ہے کہ 20 سال پہلے بھی آیا ہو, 10 سال پہلے بھی آیا. آج جا کے گھر میں سوچئے گا, اللہ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ملک سے اتنی دور, جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں 7 سمندر پار کیوں بھیجا؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ نصیب تھا یا جاب تھی یا پیسے تھے, گھر بیچ کے بھی آ جائیں گے, زیور بیچ کے بھی آئیں گے, اور یہاں آئیں گے تو درختوں پہ پیسے گریں گے, تو یہ تو یہاں آتے ہی پتہ لگ جاتا کیسا نہیں ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے لگتا ہے ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو ہورے کھڑی ہوں گی ایئرپورٹ پہ, اور وہاں ایک سدرۃ المنتہا ہوگا اور اس میں سے ایسے ڈالرز گولڈ کے بن کے گر رہے ہوں گے, اور یہاں کی پتہ لگ جاتا ہے جب دوسرے تیسرے ہفتے ہی کہا جاتا ہے جاؤ پھر $5 میں کہیں کلیننگ کی جاب تو کر لو. ہوتا ہے نا, آپ سب کا درد میرا ایک ہی ہے نا, اور میں اکثر کہتی ہوں شکر ہے کہ ہمارے بہت سارے رشتے دار یہاں نہیں آ پاتے, تو ہماری عزت بنی ہوئی ہے امریکہ سے. جب ہم پاکستان جاتے ہیں ہمارا کوئی ٹور تو دیکھے, امریکہ سے آئی ہیں باجی, وہ گھر کی ماسیاں بھی آپ کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں, اور وہ باتوں میں کہتے ہیں باجی مینو نال ہی لے جاؤ, بھی تانو میں کی کرنا, نہیں تسی مینو امریکہ لے جاؤ, مینو بڑا میں تھوڑے پانڈے دھوواں گی. جس رشتے دار کے گھر میں جاؤں نا, جہاں بھی, آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہوگا کم و بیش, اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ بس ایک بار مجھے لے جاؤ ادھر, میں بس جاؤں گی, میں وہاں جا کے دین کی خدمت کروں گی, یہیں کر لو جو کرنی ہے وہ کر لو. لیکن آپ اور میں یہاں جدھر بھی ہیں ہم اللہ کے ایک پلان کے مطابق ہیں.